मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे सिविल सर्विसेज में जो लेटरल एंट्री हो रही है इसके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज में भी सुना होगा और टीवी चैनल्स पर भी सुना होगा। जब मैं टीवी चैनल्स की बात करता हूं तो उसका संबंध दूरदर्शन समाचार से ही होता है कि गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है और ये पुरस्कार दो लोगों को दिए गए अलग अलग वर्षों के लिए। 2019 के लिए ओमान के जो सुल्तान हैं काबूस बिन सईद अल सईद, इन्हें देने की घोषणा की गई है। दोस्तों, जब मैंने न्यूज में ये सुना और मैं टीवी चैनल्स पर देख रहा था, इनका नाम पढ़ा, तो सच में मुझे पुराने दिन याद आने लगे जब राष्ट्रपति जी के साथ हम लोग ओमान की यात्रा पर गए थे और उस समय सुल्तान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। बातचीत करने का सौभाग्य भी मिला था और उन्होंने अपने महल में हम लोगों को बुला करके जो वहां खजूर हुआ करता, खजूर का एक विशेष किस्म का जो हलवा है और जिस स्टाइल से खिलाया था वो अद्भुत था। लेकिन चलिए, ये अलग बात है। वास्तव में सुल्तान का जितना सम्मान उस राष्ट्र में था उसे साफ लगता था कि ये बहुत ही लिबरल किस्म के शासक हैं और वो थे भी। उनसे जो मेरी बातचीत हुई थी उसकी चर्चा मैंने अपनी पुस्तक समय आपकी मुट्ठी में भी की है। वास्तव में बहुत ही लिबरल किस्म के सुल्तान। ऐसे व्यक्तित्व को गांधी शांति पुरस्कार दिया ही जाना चाहिए और मुझे इस बात की व्यक्तिगत रूप से खुशी है और सच पूछे तो मैं कहीं ना कहीं गर्व महसूस कर रहा हूं कि भारत ने उन्हें इस रूप में सम्मानित किया है, भले ही मरणोपरांत सही। और जो दूसरा पुरस्कार दिया गया है दोस्तों 2020 का, वो शेख मुजीबुर रहमान साहब को दिया गया है। शेख मुजीबुर रहमान के बारे में आप लोग जानते होंगे, बांग्लादेश के निर्माण का श्रेय उन्हें ही जाता है, वो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं शेख मुजीबुर रहमान। बस थोड़ी सी बातें आपको ध्यान में रहें, हो सकता है कि स्टेट सिविल सर्विस या दूसरे एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाएं। हाँ, आईएएस में इस तरह के प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जानबूझकर के मैं कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उन्हें लेकर चलता हूं। ठीक इसी तरह से एक न्यूज है, केन बेतवा नदी संपर्क योजना से संबंधित, जो कल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिसका शुभारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इससे संबंधित समझौते पर साइन किए हैं। तो जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के स्टूडेंट जो खासकर स्टेट सिविल सर्विस में अपीयर होना चाहते हैं उन्हें इसे थोड़ा सा विस्तार से जान लेना चाहिए। संक्षिप्त में कुल मिलाकर के यह है कि इससे जो दो नदियों को जोड़ा जाएगा नहर बना करके, तो इससे जो बुंदेलखंड का एरिया है जिसमें मध्य प्रदेश का कुछ भाग आता है और उत्तर प्रदेश का कुछ भाग आता है, उसकी लगभग 10.5 लाख हेक्टेयर 10.62 एग्जैक्ट आंकड़ा है भूमि की सिंचाई हो सकेगी, 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा और 103 मेगावाट बिजली पैदा हो सकेगी। बुंदेलखंड एरिया, खासकर ये जो क्षेत्र है, एक प्रकार से आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, तो डेफिनेटली इस योजना के बाद जो सिंचाई की सुविधाएं बढ़ेंगी तो उसका यहाँ के लोगों के जीवन स्तर पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसे थोड़ा सा आप जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं विस्तार के साथ देख लें। एक खबर आपने सुनी और पढ़ी होगी जो आपके बड़े इंटरेस्ट की है, वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा को लेकर। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो हमारे मनोज वाजपेयी साहब हैं और जो धनुष हैं साउथ इंडिया के एक्टर हैं, संयुक्त रूप से इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत जी को दिया गया है और सुशांत राजपूत की जो फिल्म है छिछोरे उसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, अवार्ड और भी बहुत सारे दिए गए हैं, हर क्षेत्र में अवार्ड दिए जाते हैं ना, कि बहुत अच्छी पटकथा लेखक कौन है, अच्छी गायिका कौन है, अच्छे गायक कौन है, संवाद किसने बहुत अच्छे लिखे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं। जानबूझ करके मैं उनके नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सामान्यतया उन पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो पूछे जाने की संभावना वाले प्रश्न थे, आप यूं कह लीजिए कि उनके नाम लगभग मैं बता चुका हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि एक बार तो आप जो दूसरे भी पुरस्कार हैं उन्हें पढ़ लें, दिमाग में आपके दर्ज हो जाएंगी वो बातें और संयोग से अगर कुछ पूछ ही लिया गया स्टेट सिविल सर्विस या दूसरे एग्जामिनेशन में तो कम से कम आप वहां तक पहुंच सकेंगे। दोस्तों, एक खबर जो थोड़ी सी पुरानी है, 2-3 दिन पुरानी है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके केवल दिमाग में रखने के लिए, कि अभी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने जो किसानों से संबंधित 3 कानून बनाए हैं, आपको मालूम होगा कि उन 3 कानूनों के विरोध में कुछ राज्यों ने अपने अपने यहाँ के विधानसभा में रेजोल्यूशन पारित किए थे, जिनमें पंजाब है और राजस्थान है, इस तरह के कुछ राज्यों ने पारित किए थे। तो इन लोगों ने केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के विरुद्ध रेजोल्यूशन पारित किया, राइट? अब देखिए कि संवैधानिक रूप से वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि केंद्र के बनाए हुए कानून को कोई भी राज्य निग्लेक्ट नहीं कर सकता, आप ये जानते हैं। तो इन्होंने ऐसा कर दिया। तो इसको लेकर के एक PLI दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया था कि राज्यों ने यह गलत किया है, असंवैधानिक कार्य किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए जो बात कही है वो आपको थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए, हालांकि ये कोई बात नई नहीं है, उसी तरह से है जिस तरह से हमारा संविधान अपेक्षा रखता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाँ, वो अगर वो चाहें तो इस तरह के रेजोल्यूशन संकल्प पारित कर सकते हैं, प्रस्ताव पारित कर सकते हैं राज्य, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उनके ऐसा करने से केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो अर्थहीन नहीं हो जाते। इसका मतलब है कि ये राज्य ऐसा नहीं कह सकते कि ये कानून हमारे यहां लागू नहीं होंगे, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो पॉलिटिकल साइंस है आपके जनरल स्टडीज के बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है, इसलिए मुझे लगा कि यह खबर आपको बताई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूँ आज के मुख्य विषय पर, और वह है सिविल सेवा में लेटरल एंट्री, जिसे हिंदी में कहते पार्श्व भर्तियां। इसके मैं केवल बेसिक पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसे समझ नहीं पाते हैं कि ये है क्या चीज। देखिए, जो सिविल सर्विस है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसका अपना एक सेट ढांचा है। रिक्रूटमेंट करने वाली जो एजेंसी है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है। यह भर्ती करती है, राइट? यह भर्ती करती है, और भर्ती करने के बाद फिर आप सेवा में आ जाते हैं, और सेवा में धीरे सेवा में उसका बिल्कुल एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसका एक बिल्कुल निश्चित ढांचा है, और फिर आप धीरे धीरे प्रमोट होते 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 अपने कैरियर को आगे बढ़ाते रहते हैं। और इसका जो लास्ट जो सबसे बड़ा कैरियर होता है वो केंद्र सरकार में सचिव के पद तक आप पहुंचते हैं, और उनमें भी जो सबसे टॉप का होता है वो होता है कैबिनेट सचिव का पद। सचिव आप बन गए, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, राज्य सरकार की नहीं। ये स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ऊपर 100 ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है, जो सेक्रेटरी होते हैं उनके नीचे स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी। लेकिन केंद्र सरकार में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं वो अपने आप में काफी पावरफुल होते हैं, जो एक्सिक्यूटिव पावर है रियल सेंस में, जो जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास ज्यादा होती हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी एक तरीके से एक विभाग का प्रमुख बना दिया जाता है। देखिए, सेक्रेटरी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो सारी चीजों को देखेगा, है ना, वो तो नीतिगत मामलों में ज्यादा बिजी होते हैं जो सेक्रेटरीज हैं, मिनिस्टर के साथ ये मीटिंग करना, वो मीटिंग करना, पॉलिसी मैटर पर बात करना। तो जो काम करने वाले जो अधिकारी होते हैं वो ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी के नीचे फिर डायरेक्टर और उनके नीचे डिप्टी सेक्रेटरीज होते हैं, राइट? तो अभी सरकार ने जो लेटरल एंट्री की बात कही है वो डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए। वैसे आपको मैं बताऊं कि जो डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पद हैं वो आपस में इंटरचेंज भी होते रहते हैं, वो कैसे होते हैं उसका एक सेट फार्मूला है, उस पर हम यहां नहीं जा रहे हैं। तो अब आप देखिए कि जो भर्ती हो रही है, चलिए हम डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल को ले लेते हैं। सरकार को अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ ऐसे काम हैं जिन कामों को करने के लिए, दक्षतापूर्वक करने के लिए एक विशेष किस्म के प्रोफेशनलिज्म की जरूरत होती है, एक अलग तरह की समझ चाहिए। वहां प्रशासनिक समझ उतनी काम नहीं करती जितनी कि प्रोफेशनल समझ काम करती है। जैसे मान लीजिए कि एक उद्योग की बात है या कॉमर्स की बात है, या तो यहां थोड़े से अलग किस्म के नॉलेज की जरूरत होती है, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो सरकार ने अब यह किया है कि डायरेक्ट वो ये इस पद पर लोगों को बुला रही है, डायरेक्ट उसने अपने क्वालिफिकेशन निश्चित कर दिए, इतने साल का अनुभव होना चाहिए, इतनी उम्र होनी चाहिए, ये बातें होनी चाहिए। अगर आप आना चाहते हैं तो आप अप्लाई कीजिए। इसके बाद बकायदे एक समूह होगा जो उनका इंटरव्यू लेगा, और इसके बाद इंटरव्यू में सफल होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, उनको इस पद पर नियुक्ति दे दी जाएगी। लेकिन याद रखिएगा कि ये नियुक्तियां परमानेंट नहीं है। वे 3 साल तक या 5 साल तक इन पदों पर रहेंगे और आगे के लिए सरकार फिर उन पर विचार करेगी। 3 साल 5 साल आकर के काम करेंगे, 3 4 5 साल, और इसके बाद फिर ये चले जाएंगे। इसे कहा जाता है लेटरल एंट्री, कि वो बीच में आए, किसी भी स्तर पर आए और आने के बाद फिर चले गए। ध्यान रखिएगा कि ये आपके कैडर के परमानेंट मेंबर नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कैडर में आकर के और उसमें हमेशा हमेशा के लिए शामिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये आएंगे, अपना टर्म पूरा करेंगे जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है, और इसके बाद ये वापस चले जाएंगे। इसे हम कहते हैं लेटरल एंट्री। अब इससे संबंधित जो प्रश्न सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बनते हैं दोस्तों, जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो होता है सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ। देखिए, जो सिविल सर्विस से जो ऑफिसर्स आ रहे हैं, स्पेशली आईएएस ऑफिसर्स, ये सामान्यज्ञ कहे जाते हैं, जनरलिस्ट, GENER, जनरलिस्ट, यानी कि इन्हें सब बातों की जानकारी होती है लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है, किसी एक बात की बहुत अच्छी जानकारी नहीं होती है। लेकिन प्रशासन के तो ये माहिर होते हैं। और दूसरे होते हैं विशेषज्ञ। विशेषज्ञ का मतलब है कि जो किसी एक विषय में बहुत ज्यादा दक्ष हो, स्पेशलाइज्ड हो। तो यहां जो भर्तियां की जा रही हैं, ये विशेषज्ञ लोगों की भर्तियां की जा रही हैं, क्योंकि सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये लोग आकर के उस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ वाला जो टॉपिक है, मुझे लगता है कि इसकी तैयारी आप सबको अच्छे से कर लेनी चाहिए। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आज सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। आज मैं आप भरत झुंझुनवाला का आप सबको एक लेख दे रहा हूं दोस्तों, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, और खासकर इकोनॉमिक्स की समझ को विकसित करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो 2 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है फ्रेंड्स, उनके नाम है सूर्य प्रकाश और धर्मपाल चौधरी। सूर्य प्रकाश और धर्मपाल जी, मैं आप दोनों का एकेडमी की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से 2 दोस्तों के नाम हैं मनीषा सिंह लखनऊ से और सूर्य प्रताप रायबरेली उत्तर प्रदेश से। सूर्य प्रताप, आपको बहुत बहुत बधाई एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और मेरी ओर से, कि आपने यूपी पीएससी मेंस में सफलता हासिल की है। और मैं अपने क्लास के स्टूडेंट को, जो ऑफलाइन क्लास के जो स्टूडेंट हैं, उनको बताना चाहूँगा कि जो सूर्य प्रताप हैं वे 6th बैच के स्टूडेंट रहे हैं, हमारे 6th बैच के स्टूडेंट रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।